लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें वार्षिक सत्र के दौरान आम चर्चा जनरल डिबेट 21 सितंबर से 27 सितंबर तक चली। वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर यूएन महासभा की इस वर्ष की जनरल डिबेट मिले जुले रूप में आयोजित हुई। कुछ देशों के नेताओं ने जनरल डिबेट में वर्चुअल शिरकत की, जबकि अन्य नेताओं ने न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय के महासभागार से विश्व समुदाय को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने मंगलवार 21 सितंबर को महासभा के जनरल डिबेट की शुरुआत पर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के प्रति आगाह किया। उन्होंने आपसी भरोसे और उम्मीद की पुनर्बहाली किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मानवता गलत दिशा में आगे बढ़ते हुए रसातल के मुहाने तक पहुँच चुकी है। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए दुनिया को नींद से जागना होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने जनरल डिबेट की शुरुआत करते हुए कोरोना वायरस महामारी के बहुत ही दुख भरे दिनों को याद किया और कहा कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने निकट सहयोग और एकजुटता दिखाकर कोविड-19 की अनेक वैक्सीन का विकास व उत्पादन किया और ये इंसानियत के इतिहास में सबसे विशाल दायरे वाला टीकाकरण साबित हुआ है। उन्होंने इस असाधारण सफलता को गौरवान्वित महसूस करने का एक मौका करार दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूएन महासभा की 76वीं उच्च स्तरीय आम चर्चा की शुरुआत पर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के प्रति आगाह किया। उन्होंने आपसी भरोसे और उम्मीद को पुनर्बहाल किए जाने का आह्वान किया है।
आई एम हियर टू साउंड द अलार्म, द वर्ल्ड मस्ट वेक अप।
महासचिव कह रहे थे कि वो यहाँ आगाह करना चाहते हैं, दुनिया को नींद से जागना होगा, हम गलत दिशा में आगे बढ़ते हुए रसातल के मुहाने पर पहुँच चुके हैं। यूएन प्रमुख ने अपने संबोधन में विश्व के समक्ष मौजूद 6 बड़े विभाजनों को पाटे जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इनमें जलवायु परिवर्तन, लैंगिक असमानता, धनी और निर्धन देशों के बीच खाई और डिजिटल टेक्नोलॉजी तक पहुंच में विषमता सहित अन्य वैश्विक चुनौतियां हैं। यूएन महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने इस अवसर पर कहा कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने आपसी सहयोग और एकजुटता से रिकॉर्ड समय में कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया है। उन्होंने इसे एक असाधारण सफलता बताया और कहा कि ये इंसानियत के इतिहास में सबसे विशाल दायरे वाला टीकाकरण साबित हुआ है। महासभा प्रमुख अब्दुल्ला शाहिद ने सचेत किया कि अगले 12 महीनों के दौरान दुनिया को नाजुक हालात, हिंसक संघर्ष, कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन जैसी साझा चुनौतियों के समाधान ढूंढने हैं।
वी कैन चूज अ पाथ ऑफ आइसोलेशनिज्म, ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, ऑफ अ स्लो रिट्रीट ऑफ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट।
महासभा प्रमुख आगाह कर रहे थे कि या तो हम अलग थलग रहने और आपसी विनाश के रास्ते को चुन सकते हैं या फिर एक नए रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, पृथ्वी के भविष्य को बदलने के लिए एक टिकाऊ और सुदृढ़ रास्ता।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के जनरल डिबेट में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को लोकतंत्र के प्रति देश की प्रतिबद्धता फिर से पुष्टि की है और कोविड-19 महामारी की वैक्सीन विकसित करने और निर्माण में महान सफलता की तरफ भी ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने साथ ही प्रतिगामी सोच वाले देशों से सावधान रहने के लिए सतर्क भी किया है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने वीडियो संदेश में यूएन महासभा को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगान में मौजूदा सरकार को मजबूत करने और देश के लोगों की बेहतरी के खातिर उसे स्थिर किए जाने का आह्वान किया और पड़ोसी राज्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रोहिंग्या शरणार्थी संकट के स्थायी समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सक्रिय समर्थन का आग्रह किया। उन्होंने ध्यान दिलाया कि यह संकट अपने पांचवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और देश में राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद म्यांमार को शरणार्थियों की सुरक्षित व गरिमामय वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि अफगानिस्तान के मौजूदा नाजुक हालात का फायदा कोई अन्य देश अपने स्वार्थी हित साधने के लिए ना कर सके। नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूएन महासभा के 76वें सत्र की उच्चस्तरीय जनरल डिबेट को संबोधित करते हुए कहा,
रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु मुद्दे पर विश्व नेताओं का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जवाबदेह हैं। जब वो पूछेंगी कि जब निर्णय लेने का समय था तो हम लोग क्या कर रहे थे, यानी वो लोग जिनकी जिम्मेदारी दुनिया को एक दिशा दिखाने की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान में मौजूदा सरकार को मजबूत करने और देश के लोगों की बेहतरी की खातिर उसे स्थिर किए जाने का आह्वान किया है। इमरान खान ने शुक्रवार को यूएन महासभा के 76वें सत्र की उच्च स्तरीय जनरल डिबेट को वीडियो संदेश में कहा,
इफ वी निग्लेक्ट अफगानिस्तान राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द यूएन हाफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान ऑलरेडी वनरेबल एंड बाय नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट 90% ऑफ पीपल इन अफगानिस्तान विल गो बिलो द पॉवर्टी लाइन।
इमरान खान कह रहे थे कि अगर इस समय अफगानिस्तान को नजरअंदाज किया गया तो जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं, अफगानिस्तान में लगभग आधी आबादी बेहद कमजोर हालात में है और अगले वर्ष तक देश की 90% आबादी निर्धनता की रेखा से नीचे चली जाएगी। अफगानिस्तान में एक बड़ा मानवीय संकट सामने नजर आ रहा है और अगर एक अस्थिर व संकटग्रस्त अफगानिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन जाता है तो उसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे, न केवल पड़ोसी देशों के लिए बल्कि हर जगह। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के साथ संबंधों के बारे में कहा कि पाकिस्तान अन्य पड़ोसी देशों की ही तरह भारत के साथ भी शांति चाहता है। उन्होंने अलबत्ता ध्यान दिलाया कि क्षेत्र में टिकाऊ शांति जम्मू कश्मीर विवाद के समाधान पर निर्भर है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रोहिंग्या शरणार्थी संकट के स्थायी समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सक्रिय समर्थन का आग्रह किया है। उन्होंने शुक्रवार को यूएन महासभा के 76वें सत्र की उच्च स्तरीय जनरल डिबेट को संबोधित करते हुए ध्यान दिलाया कि ये संकट अपने पांचवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और म्यांमार में राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद शरणार्थियों की सुरक्षित व गरिमामय वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना होगा। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या संकट म्यांमार में उपजा था और इसका समाधान भी म्यांमार में ही मौजूद है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को रोहिंग्या संकट के स्थायी समाधान के लिए रचनात्मक सहयोग देते हुए रोहिंग्या शरणार्थियों की म्यांमार के राखीन प्रांत में सुरक्षित, सतत और गरिमामय ढंग से वापसी सुनिश्चित करनी होगी।
और इसी के साथ हम लोकोपकारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज के सभी विषय UN हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। इटली के मिलान शहर में यूथ फॉर क्लाइमेट शीर्षक से आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में एकत्र 197 राष्ट्रों के लगभग 400 युवा प्रतिनिधियों को गुरुवार को प्रेषित एक वीडियो संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने पर्यावरण की देखभाल हेतु शिक्षा की भूमिका को महत्वपूर्ण निरूपित किया। संत पापा ने कहा कि मानव जाति पर पड़े संकटों जैसे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण हेतु राजनैतिक और तकनीकी समाधान तब तक पर्याप्त नहीं होंगे जब तक कि देखभाल और जिम्मेदार साझाकरण की संस्कृति विकसित न की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्कृति शिक्षा के माध्यम से ही पोषित हो सकती है जो बंधुत्व के आधार पर विकास और स्थिरता को प्रोत्साहित करे। यूथ फॉर क्लाइमेट सम्मेलन का आयोजन 26वें संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 की तैयारी में किया गया था। यह सम्मेलन 1 नवंबर से 12 नवंबर तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में संपन्न होगा। 28 से 30 सितंबर तक जारी रहे यूथ फॉर क्लाइमेट सम्मेलन में युवाओं ने COP26 में भाग लेने वाले राष्ट्रों और सरकारों के प्रतिनिधियों के समक्ष पर्यावरण की सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव रखे हैं। इस सम्मेलन में पर्यावरण कार्यकर्ता स्वीडन की युवती ग्रेटा थुनबर्ग ने इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि उत्सर्जन में वृद्धि जारी है तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, हम जलवायु न्याय चाहते हैं और हम इसे अभी चाहते हैं। संत पापा ने युवाओं को पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता और उनके सपनों तथा योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं की दूरदृष्टि वयस्क विश्व को चुनौती देने में सक्षम है, इसलिए कि वे केवल कार्रवाई के लिए ही नहीं अपितु धैर्यपूर्वक सुनने और रचनात्मक संवाद करने के लिए भी तैयार हैं। संत पापा ने युवाओं को शिक्षा पर आधारित एक विस्तृत और नवीन संविधा की रचना हेतु आमंत्रित किया ताकि वे ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करें जो भलाई में दृढ़ हों, परिपक्व हों, विभाजन और विखंडन पर काबू पाने तथा मानवता को और अधिक भाई सुलभ बनाने के लिए रिश्तों की संरचना में समर्थ हों। संत पापा फ्रांसिस युवाओं को न केवल दुनिया का भविष्य बल्कि इसका वर्तमान भी मानते हैं जो आज अपने कार्यों द्वारा भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। संत पापा ने युवाओं से कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को रोकने के लिए मानव और पर्यावरण के बीच भाईचारे और सामंजस्य पर केंद्रित विकास और स्थिरता के सांस्कृतिक मॉडल की नितांत आवश्यकता है। ब्राजील में प्रार्थना प्रेरिताई संबंधी न्यास की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश भेजकर कहा कि प्रार्थना कलीसिया के मिशन का प्राण है। संत पापा फ्रांसिस ने विगत 150 वर्षों से कलीसिया की प्रेरिताई की सफलता के लिए प्रार्थना को प्रोत्साहित करने के लिए ब्राजील के उक्त न्यास से जुड़े सभी लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा, पवित्र कलीसिया तथा मानव जाति की आवश्यकताओं के लिए आपकी प्रार्थना और आपके साक्ष्य के लिए धन्यवाद। संत पापा ने कहा कि यह प्रेरितिक सेवा मौलिक है क्योंकि यह कलीसिया के मिशन का प्राण है। उन्होंने कहा कि बिना प्रार्थना के मिशन का कोई अस्तित्व नहीं, साक्ष्य का कोई अस्तित्व नहीं और प्रार्थना के बिना एकता भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रार्थना ही वह अस्त्र है जो हम मनुष्यों को एकता के सूत्र में बांधती तथा मानवता के समक्ष प्रस्तुत अनगिनत चुनौतियों का सामना करने का संबल प्रदान करती है। अस्तु, उन्होंने कहा, हम सब येसु और मां मरियम के हृदय के साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने हेतु प्रार्थना करें तथा जन जन में सुसमाचार के आनंद और आशा का प्रसार करें। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बुधवार को हिंदू चरमपंथियों ने यह दावा कर कि वधु को बलपूर्वक हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा था, एक विवाह समारोह को भंग कर दिया। हिंदू कार्यकर्ताओं के इस दावे के बाद कि दुल्हन ईसाई धर्म में परिवर्तित हिंदू थी, पुलिस ने एक प्रोटेस्टेंट दंपति के विवाह की जांच शुरू कर दी है। हालांकि वर और वधु दोनों के परिवारों ने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन हंगामे के कारण वर वधु और दोनों परिवारों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इंदौर में सेवारत पादरी पत्रस साविल ने गुरुवार को उका समाचार को बताया कि हिंदू कार्यकर्ताओं के आरोप गलत साबित होने के बाद वर वधु और उनके दोनों परिवारों को मुक्त कर दिया गया। पादरी पत्रस साविल ने कहा, नव विवाहित दंपत्ति ईसाई हैं और धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप के आधार पर उनके विवाह समारोह में खलल डाला गया था। पुलिस ने ईसाइयों और उनके कल्याणकारी कार्यों का विरोध करने वाले दक्षिणपंथी हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के एक पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर शादी की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में कैथलिक कलीसिया के जनसंपर्क अधिकारी फादर मरिया स्टीवन ने कहा, यह बड़े खेद की बात है कि ख्रिस्तियों को उनके धर्म पालन और विश्वास के लिए लक्षित किया जाता है। गौरतलब है कि जनवरी माह में मध्य प्रदेश सरकार ने 3 दशक पुराने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया था, जिसके बाद से ख्रिस्तियों के विरुद्ध हमलों में वृद्धि हुई है। फादर स्टीवन के अनुसार, नए धर्मांतरण विरोधी कानून ने विनाशकारी तत्वों को मजबूत किया है जो अब बिना सबूत के किसी पर भी धर्म परिवर्तन का आरोप लगा सकते हैं। कानून के अनुसार आरोपी द्वारा अपनी बेगुनाही साबित करना अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने म्यांमार की नाजुक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि म्यांमार की तबाही को रोकने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया आवश्यक है, अन्यथा यह संकट बड़े पैमाने पर आपदा में बदल सकता है। विगत फरवरी माह में म्यांमार में सेना के तख्ता पलट के बाद राष्ट्र में उत्पन्न संकटपूर्ण स्थिति के मद्देनजर श्री गुतेरेस ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल ठोस प्रतिक्रिया का आह्वान किया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 29 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में परिचालित एक दस्तावेज में उन्होंने कहा, म्यांमार को लोकतांत्रिक सुधार के रास्ते पर वापस लाने में मदद करने के लिए एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया शुरू करना जरूरी है। उन्होंने कहा, सेना को शासन पर पूर्ण कब्जा करने से रोकने का अवसर कम हो सकता है। उनका कहना था कि म्यांमार के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि म्यांमार की संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करना और 8 नवंबर 2020 के चुनाव के परिणामों को बनाए रखना अनिवार्य है, जिसे आउंग सान सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने भारी बहुमत से जीता था। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।